समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।
नमस्कार श्रोताओं, आपके मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक के साथ मैं हूं विमलेंदु पांडे। आज के इस अंक में हम पेंशन भोगियों की शिकायतों के प्रभावी निराकरण पर चर्चा करेंगे। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के निदेशक डॉ प्रमोद कुमार। डॉक्टर, आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
धन्यवाद जी।
श्रोताओं, देश में जीवन प्रत्याशा बढ़ी है, कार्यरत कर्मियों से ज्यादा पेंशन भोगियों की संख्या होती जा रही है। अब समाज की जिम्मेदारी बनती है कि अपने वरिष्ठ नागरिकों की मौलिक समस्याओं पर ध्यान दें। इसी दिशा में सरकार ने भी इसके लिए विभाग और मंत्रालय की व्यवस्था भी की है। आज के इस कार्यक्रम में हम पेंशन भोगियों की अनेक समस्याओं के निराकरण के बारे में चर्चा करेंगे। श्रोताओं को एक बात बता दें कि आज हम केवल केंद्र सरकार के कर्मियों के पेंशन के बारे में ही चर्चा करेंगे। इससे संबंधित अगर आपके कोई सवाल हो तो आप निसंकोच तत्काल हमें फोन कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं 2331-4444 और 2342-1050 और तीसरा नंबर है 2331-0481। दिल्ली से बाहर के श्रोता इस नंबर से पहले 011 डायल करना न भूलें। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए भी सवाल पोस्ट कर सकते हैं। श्रोता व्हाट्सएप के माध्यम से भी स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। ये कार्यक्रम दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। डॉक्टर प्रमोद जी, कहा जाता है कि पेंशन बुढ़ापे की लाठी होती है, अवलंब होता है। अगर अवलंब मजबूत है तो जीवन की ये पारी समाज को बहुत कुछ दे सकती है। पेंशन व्यवस्था पर आपका विभाग किस तरह काम करता है?
सबसे पहले मैं आपके सब श्रोताओं को नमस्कार करना चाहूंगा। भारत सरकार का पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग
जी
केंद्र सरकार के पेंशनर्स के लिए पॉलिसीज का निर्धारण करता है। इसके अलावा कोई भी विभागों के द्वारा जो पेंशन संबंधित इंक्वायरीज आती हैं उनके बारे में अपना क्लैरिफिकेशन
जी
देते हैं और अंततः पेंशन संबंधी शिकायतों का निवारण करने में इस विभाग का उल्लेखनीय योगदान है।
प्रमोद जी, एक हमारे श्रोता हैं हरिगढ़ उत्तर प्रदेश से, जितेंद्र जी। जितेंद्र जी नमस्कार, आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
सर नमस्कार।
जी नमस्कार, आप अपना सवाल पूछें।
सवाल मेरा ये है, जैसे केंद्रीय कर्मचारी होते हैं
जी,
जैसे उनका रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है उनको साल दो साल, या उस कर्मचारी की किसी अनहोनी के कारण मृत्यु हो जाती है
जी,
उसकी पत्नी को क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा, क्या जमा करना पड़ेगा, या जितनी कर्मचारी को पेंशन मिलती थी उसी राशि मिलेगी उनकी पत्नी को भी, इस पे विचार करें सर।
जरूर।
जितेंद्र जी नमस्कार। अगर किसी केंद्र सरकार के कर्मचारी की मृत्यु दुर्भाग्यवश हो जाती है तो सबसे पहला हक उनकी धर्मपत्नी का होता है। इसके लिए कुछ नियमित दस्तावेज बताए गए हैं, जैसे डेथ सर्टिफिकेट, अंडरटेकिंग और एक फॉर्म उनको भरना पड़ता है। उस फॉर्म के साथ काफी एनेक्सर्स होते हैं। अब ये स्थिति होती है कि अगर पेंशन की मृत्यु के बाद अगर वह है कुछ मृत्यु हुई है तो उसके लिए उनको बैंक में जाना पड़ता है और क्योंकि उनका नाम पीपीओ में लगा होता है, अन्यथा अगर सर्विस के दौरान हुई मृत्यु है तो उसके लिए दस्तावेज उनको अपने संबंधित मंत्रालय या कार्यालय में जमा कराने होते हैं। और रही बात आपने अमाउंट की पूछी, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले 10 सालों के लिए जो लास्ट बेसिक पे है उसका 50% प्लस जो महंगाई भत्ता है उसके लिए वो एलिजिबल होते हैं। जी
अच्छा, इनका एक सवाल और भी था और भी, कि अगर पेंशन सेंक्शन होने के बाद तुरंत मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसको फुल पेंशन कब तक मिलेगी, जैसा अगर वो व्यक्ति जीवित रहती है जो पेंशन भोगी है।
जी ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। जैसा कि मैंने बताया कि 10 साल तक उनको 50% पेंशन मिलेगी, अन्यथा अगर उनकी मृत्यु, ये माना जाए कि पेंशनर की मृत्यु ना हुई होती और उनकी उम्र 67 ईयर की होती तो जिसमें से जो भी पहले है उतने समय तक उनको 50% के हिसाब से लास्ट बेसिक पे का मिलता और उसके पश्चात जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन है जो कि 30% लास्ट बेसिक पे का है उतना मिलता।
जी अभी इस पर आगे और चर्चा करेंगे। दिल्ली से हमारे श्रोता हैं रघुवेंद्र जी। रघुवेंद्र जी लगता है कि ऑडियो में थोड़ी बाधा आ रही है। रघुवेंद्र जी आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? रघुवेंद्र जी से संपर्क हमारा कट गया है। प्रमोद जी इस बारे में हम आगे चर्चा कर रहे थे कि अगर फैमिली पेंशन है तो ऐसी स्थिति में विडो डॉटर हो, अगर विधवा पुत्री हो, डाइवोर्सी पुत्री हो या अनमैरिड पुत्री हो तो उस केस में पेंशन का किस तरह से विभाजन होता है उस फैमिली में?
जी इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो पेंशन संबंधित कानून रूल्स हैं
जी
उनमें फैमिली पेंशन का एक क्रमबद्ध है। सबसे पहले हक जो होगा वो स्पाउस का होगा, अगर वो नहीं है किसी कारणवश तो बच्चों का होगा, उसके बाद अगर वो नहीं है किसी कारणवश तो डिपेंडेंट पेरेंट्स का होगा और आखिर में जो चौथा नंबर है वह डिसेबल्ड सिबलिंग्स यानी कि भाई बहन का होगा।
जी।
इसमें आपने जो सवाल पूछा वो काफी तार्किक है कि विडो डॉटर, अनमैरिड डॉटर या डायवोर्सी डॉटर्स का क्या स्थिति रहेगी जिनमें उनको पेंशन मिले। सबसे पहले बात करते हैं अनमैरिड डॉटर, अगर कोई भी उनका भाई बहन उनसे जो बड़े हैं
जी जी
और वो 25 साल से कम उम्र के हैं तो उनको पेंशन नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर उनका कोई डिसेबल्ड भाई बहन है उनको पेंशन मिलेगी। अगर ये दोनों स्थिति नहीं हो पाती है तो उसके बाद किसी भी अनमैरिड डॉटर को मिल सकती है। इसके लिए कोई भी आयु की सीमा नहीं है। रही बात तलाकशुदा बेटियों की, इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि केवल इसी स्थिति में फैमिली पेंशन मिल सकती है कि अगर ये तलाक की जो प्रक्रिया है वह किसी कंपिटेंट न्यायालय या कोर्ट में पेंशनर या फैमिली पेंशनर जो माता पिता है जीवित रहते हुए उन्होंने चालू की हो और चाहे डाइवोर्स बाद में हुआ हो, और जो फैमिली पेंशन है वो डाइवोर्स के प्रोसीडिंग्स खत्म होने के बाद यानी डाइवोर्स तलाक होने के बाद से ही शुरू होगी। और विधवा बेटी की भी यही स्थिति है कि अगर दुर्भाग्यवश उनके पति की मृत्यु उनके माता पिता के या एक के रहते हुए हुई हो
जी जी।
तभी उनको फैमिली पेंशन मिलती है।
प्रमोद जी एक बात और हम यहां आपसे पूछना चाहेंगे कि ऐसा पुत्र जो दिव्यांग हो उनकी उम्र की कोई सीमा है या 25 वर्ष के होते ही वो उस पेंशन के लिए पात्र नहीं होंगे?
देखिए, डिसेबल के लिए जो है कुछ सीमाएं हमने रिलैक्स कर दी गई हैं, की हैं, जैसे कि आयु की कोई सीमा नहीं रहेगी और अगर वो मैरिज भी करे तो कोई उसमें बाध्यता नहीं आएगी। परंतु जो स्थिति मैं आपको पहले बताना चाह रहा था कि डॉटर्स के मामले में अगर उनकी आयु उनकी आय जो बेसिक पेंशन है 9000 प्लस महंगाई भत्ते से अगर ज्यादा है तो उनको नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से डिसेबल्ड बच्चे के केस में भी अगर उनकी आय 30% जो लास्ट बेसिक पे है प्लस डीआर से अगर कम है तभी वो फैमिली पेंशन के पात्र होंगे।
एक बात और भी है कि मिसिंग पर्सन की बात कि अगर वो अपने जीवन काल में जैसे नौकरी कर रहे हों उस समय मिस हो गए हों, उनके बाद में ऐसे लोगों की पेंशन कैसे बनती है, फिर फैमिली पेंशन कैसे बनती है?
जी, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रकार के जो केसेस हैं वह हमारे सशस्त्र बलों में पाए जाते हैं, जैसे कि आर्मी और हमारे जो बीएसएफ सीआरपीएफ है
जी,
मिसिंग हो जाता है और पहले 7 साल तक का उनको वेट करना पड़ता था, परंतु अब वह सीमा हटा दी गई है। इसके लिए संबंधित परिवार को एफआईआर या पुलिस स्टेशन में जाके डेली डायरी रजिस्टर में एंट्री करनी होगी और उसके बाद एक वो लिखना होगा कि सभी उपाय करने के बावजूद जो है वो पा नहीं सके हैं और इसलिए उसके उपरांत 6 महीने के बाद वह फैमिली पेंशन के पात्र हो सकते हैं।
यानी 7 साल तक हमें इंतजार करना पड़ेगा?
नहीं, पहले ये 7 साल की सीमा थी
जी,
कि तभी हम किसी मनुष्य
व्यक्ति को मिसिंग पर्सन डिक्लेयर करें,
मृत्यु को प्राप्त हुआ मृत समझते थे
जी।
परंतु अब इसमें रिलैक्सेशन कर दी गई है कि 6 महीने अगर एफआईआर के बाद तक वो
नहीं मिलते हैं
तो फैमिली पेंशन
के हाल हो
सकते।
जी। दिल्ली से हमारे श्रोता है धर्मवीर जी। धर्मवीर जी नमस्कार।
सर जी नमस्कार। और मैं ये क्वेश्चन ये है सर
जी।
फादर गवर्नमेंट जॉब में थे
जी,
फादर एक्सपायर हो गए, फादर के बाद उनकी वाइफ को पेंशन जा रही है
जी।
उनकी एक अनमेरिड डॉटर है तो उस डॉटर को वो पेंशन कब शिफ्ट होगी, जब मदर भी एक्सपायर हो जाने के बाद फिर उसको शिफ्ट होगी, कैसे इसका प्रोसीजर रहेगा, ये मेरे को थोड़ा सा जानकारी लेनी है।
प्रमोद जी इनकी जानकारी दीजिएगा।
धर्मवीर जी नमस्कार। पहले तो जैसा कि मैंने आपको कार्यक्रम में पहले भी बताया कि सबसे पहला पात्र जो है स्पाउस होता है, यानी कि पति या पत्नी। उनकी मृत्यु के बाद अनमैरिड डॉटर को पेंशन मिल सकती है, लेकिन उससे पहले उनके भाई बहन जो बड़े हैं उनकी उम्र 25 साल से कम ज्यादा होनी चाहिए तभी उनको पेंशन मिलेगी। और अनमैरिड डॉटर के केस में उनको जो है अपनी एप्लीकेशन कंसर्न्ड मिनिस्ट्री या विभाग में जमा करानी है, वहीं पर डेथ सर्टिफिकेट अंडरटेकिंग और जो फॉर्म है वो जमा कराना होता है। उसकी तफ्तीश के बाद अनमैरिड डॉटर को पेंशन मिलती है। परंतु मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि अगर उनकी आय बेसिक पेंशन यानी कि 9000 प्लस डीआर से कम है तभी वह
इसकी
फैमिली पेंशन के हकदार होंगे।
प्रमोद जी, अगर किसी केंद्र सरकार के पेंशनर्स या पारिवारिक पेंशनर्स को पेंशन संबंधी कोई समस्या है तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए?
बहुत ही सटीक प्रश्न आपने किया है। देखिए, ओवर द पीरियड जो है डिजिटाइजेशन हुआ है, चीजें जो है सरलीकरण हुआ है, ऑनलाइन आई है, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के पेंशन एवं पेंशन कल्याण विभाग ने सीपन ग्राम पोर्टल का के द्वारा 2400 घंटे पेंशनर्स के ग्रीवांस लेने का प्रावधान किया है। इस पोर्टल का जो यूआरएल लिंक है वह है pgportal.gov.in/pension/। मैं फिर से इसको दोहराना चाहूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके श्रोता इस पोर्टल के बारे में अधिक से अधिक जानें। इसका यूआरएल लिंक है pgportal.gov.in/pension/। इसके अलावा हमारा टोल फ्री नंबर भी है, उस पर भी अगर कोई वृद्ध जो कि स्मार्टफोन यूज नहीं कर सकते हैं या टाइप नहीं कर सकते हैं किसी कारणवश, तो वो हमारे टोल फ्री नंबर 1800-11-1960, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, 1800-11-1960। इस टोल फ्री नंबर पर कोई भी शिकायत पेंशन संबंधी दर्ज करा सकते हैं। सभी कार्य दिवसों पर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जी।
इसके अलावा कोई अगर पत्राचार करना चाहे तो?
पत्राचार के लिए हमारे विभाग में शिकायतकर्ता सीधे अपनी शिकायत को भेज सकते हैं। हमारा एड्रेस है निदेशक पेंशन, तीसरी मंजिल, लोकनायक भवन, दिल्ली 3। जो आप पत्राचार करेंगे उसके आधार पर हमारे कॉल सेंटर के सक्षम अधिकारी उस दी हुई जानकारी को पोर्टल पर जमा कराएंगे और मोबाइल नंबर के द्वारा रजिस्ट्रेशन नंबर शिकायतकर्ता के मोबाइल पर आएगा जिससे वो आगे का भी फॉलोअप कर सकते हैं।
मथुरा से उत्तर प्रदेश में हमारे श्रोता हैं सुरेंद्र सिंह जी।
सुरेंद्र सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ जी, मथुरा से
जी। नमस्कार, आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
नमस्कार सर, मोदय जी नमस्कार।
आप अपना सवाल पूछें।
सर मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ, पिताजी नहीं दौरान से कोई भी नहीं है और मैं एक नेत्रहीन व्यक्ति हूँ, दिव्यांग व्यक्ति हूँ
जी जी।
तो मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे दिव्यांग व्यक्ति को पेंशन यदि मिल सकती है और मिल सकती है तो किस प्रकार से आवेदन किया जाना चाहिए?
सुरेंद्र सिंह जी, यहाँ हम केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन की बात कर रहे हैं। हमारी विषय वस्तु अभी यही है, आप संबंधित राज्य सरकार के विभाग से संपर्क कर सकते हैं इस बारे में। प्रमोद जी, हम एक दूसरी और बात कर रहे थे इसी पे आगे कि शिकायतकर्ता के लिए कोई ईमेल एड्रेस भी है, जैसे अभी पत्राचार पे किया, मान लीजिए टेलीफोन पर उसने टोल फ्री नंबर पे किया
जी,
तो ईमेल पे अपनी शिकायत भेजते वो
जी? इसके लिए भी सुविधा की गई है। हमारा ईमेल आईडी है care.dppw@nic.in। इस पर भी आप अपना ईमेल भेज सकते हैं। इसके बाद जो संबंधित विवरण शिकायत का रहेगा वह हमारा कॉल सेंटर के अधिकारी सीपनग्राम पोर्टल पर भरेंगे और आपकी शिकायत को दर्ज करेंगे।
प्रमोद जी एक बात और है, जैसे हमने टेलीफोन पर शिकायत की तो उसका कोई एक्नॉलेजमेंट नंबर भी क्या उस मोबाइल फोन पे मिल जाएगा उनको, मतलब रेफरेंस क्या रहेगा उनका
जी? इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको विवरण विस्तृत रूप से बताना चाहूंगा कि जैसे हमने बताया कि हमारे पोर्टल का यूआरएल लिंक है pgportal.gov.in/pension/। इसके बाद आप अपनी भाषा को चुन सकते हैं, अंग्रेजी या हिंदी। उसके बाद आपको लॉज योर ग्रीवांस पर क्लिक करना है और पेंशनर की कैटेगरी को क्लिक करके अपनी शिकायत का विवरण 4000 शब्दों में जमा कराना है।
अब प्रमोद जी अपनी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले लाइन पे इस समय हमारे श्रोता हैं दिल्ली से रघुवेंद्र जी, शायद इनका नंबर पहले कट गया था, अब ये लाइन पर है। रघुवेंद्र जी नमस्कार।
आप सबको नमस्कार
जी, अपना सवाल पूछें।
मेरा सवाल ये है सर, रघुविंदर सिंह बोल रहा हूँ मैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से रिटायर्ड पर्सन हूँ
जी जी,
और ईपीएस 95 का मेंबर हूँ
जी हाँ जी,
इसी की मुझे जो पेंशन लगातार मिल रही है
हाँ।
लेकिन इसमें रिवाइज होने की अभी सुप्रीम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ डायरेक्शन हुई थी, तो ये कब तक रिवाइज हो जाएगी कृपया ये बताने का कष्ट कीजिएगा।
रघुविंदर जी नमस्कार, ये जो ईपीएफ 95 की जो पेंशन है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया था, यह मुद्दा जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आता है। मैं चाहूंगा कि आप हमारे पोर्टल पर अपना ग्रीवांस रजिस्टर करें, हम उस ग्रीवांस को संबंधित विभाग में भेज पाएंगे और इस विषय का उचित उत्तर संबंधित विभाग या मंत्रालय ही दे पाएगा। इसके अलावा जैसे कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे
जी जी।
कि हम अपनी शिकायत का विवरण जमा कराएंगे
हाँ।
तो जमा कराते हुए हमें मोबाइल नंबर भी एक देना पड़ता है। यहां मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जरूरी नहीं है कि जो मोबाइल नंबर है वो किसी पेंशनर के बैंक खाते से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर हो, ये कोई भी मोबाइल नंबर हो सकता है, पेंशनर का, फैमिली पेंशनर का, उनके संबंधी का, या पेंशनर एसोसिएशन जो हमारे विभाग से जुड़ी हुई है वो भी, उनका भी मोबाइल नंबर हो सकता है। उस मोबाइल नंबर पर जब सफलतापूर्वक कोई शिकायत दर्ज हो जाती है तो एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर आता है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर जब वो आ जाता है तो इसको समझ लिया जाए कि आपकी जो शिकायत है वो सफलतापूर्वक दर्ज कर ली गई है।
प्रमोद जी, रक्षा कर्मचारियों विशेषकर हमारे जवानों की पेंशन समस्याएं कुछ अलग तरह की होती हैं और इनकी फैमिली पेंशन शुरू होने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, विशेषकर दूर दराज के क्षेत्र में। जैसे कि हमारे जवान की पत्नी अगर बुजुर्ग हैं तो किसी अगर दूर दराज के क्षेत्र में रह रही हैं जहां पर संपर्क करना आसान नहीं है, तो क्या वो कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके सीपीएन ग्राम पर अपनी कम्प्लेंट दर्ज करा सकती हैं?
देखिए अभी,
या फैमिली पेंशन के बारे में जो भी आवेदन करना हो कर सकती हैं?
कॉमन सर्विस सेंटर अभी सीपेन ग्राम पोर्टल से नहीं जुड़ा है तो अभी वो सुविधा उपलब्ध नहीं है, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि वो डायरेक्ट हमारे पोर्टल पर जाकर अपनी ग्रीवांस रजिस्टर करा सकती है या टोल फ्री नंबर या पत्राचार या ईमेल के द्वारा दर्ज करा सकती है।
बिहार समस्तीपुर से हमारे श्रोता हैं धीरज जी। धीरज जी नमस्कार। हाँ जी
सर, मेरा एक सवाल क्वेश्चन था कि ये जो सरकारी पोर्टल जो इन्होंने अभी बताया सर ने
सीपीएनएन ग्राम
जी जी सीपीएनएन पे, मैंने उस पर अपनी पेंशन लेकर के कुछ मैंने कंप्लेन की थी, लेकिन एक महीने से ऊपर हो गया सर, अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया, ना कोई रिस्पांस आया, तो मुझे अब कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए सर आगे?
धीरज जी पहले तो नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस डिजिटल जो क्रांति का हिस्सा बन रहे हैं जिसमें कि जो ग्रीवांस है वो शीघ्र और पारदर्शी तरीके से रिजॉल्व किए जाते हैं। जैसे कि उस पोर्टल पर रिमाइंडर की भी सुविधा है और स्टेटस की भी सुविधा है, तो आप अपना जो यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालिए और मोबाइल नंबर डालिए, उसके बाद आपको ये उसके बारे में जानकारी मिलेगी। इसके अलावा हम आपको बताना चाहते हैं कि जो ज्यादा समय तक लंबित मामले रह जाते हैं उनका संज्ञान खुद विभाग लेता है और संबंधित जहां से ये शिकायत संबंधित विभाग की या मंत्रालय की होती है उनके साथ बैठकें की जाती है ताकि शिकायत का शीघ्र और गुणात्मक निवारण हो सके।
प्रमोद जी, इस बारे में मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा, क्या पेंशन अदालतें भी लगती हैं आपके विभाग द्वारा?
ये बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया, क्योंकि कई बार होता है कि जैसा कि आप जानते हैं कि पेंशन जो है वो जटिल प्रक्रिया है कि किस तरह से पेंशन वर्कआउट की जाती है
जी जी।
और बहुत बार ये पुराने रिकॉर्ड से निकाल के किया जाता है, तो शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं हो पाते, तो ऐसे केसेस जो कि बहुत समय से लंबित है उसके लिए विभाग ने पेंशन अदालतों का आयोजन किया है जो कि दिल्ली में भी होती है और संबंधित जो विभाग है उनको भी समय समय पर दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि वो पेंशन अदालत करे। इन पेंशन अदालतों में संबंधित विभाग के अधिकारी जिसमें कि बैंक भी हो सकते हैं और भी जो है स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाया जाता है, निमंत्रित किया जाता है और समस्या का निवारण करने का एक प्रयास किया जाता है। और इस बारे में भी हमारा विभाग अग्रणीय है कि जो पेंशनर हैं वो दूर दराज के क्षेत्र में रहते हैं, किसी कारणवश नहीं आ सकते, परंतु हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उन्हें जोड़ते हैं और सब चीजें जो है आमने सामने होती है और इनका जो सफलता प्रतिशत है पेंशन अदालत का वो काफी हाई है। जी
ये करीब साल में कितनी बार आयोजित हो जाती हैं इस तरह की अदालतें?
ये अदालतें विभाग 2 से 3 बार करता है
साल में।
जी जी।
मथुरा से हमारे एक नए श्रोता है महेंद्र जी। महेंद्र जी आप अपना सवाल पूछें, आपका स्टूडियो में स्वागत है पूरी, और बताएं सवाल अपना।
सर नमस्कार।
जी जी
जी मैं महेंद्र सिंह बोल रहा हूँ सर मथुरा से। जी मेरा सवाल ये है कि अगर केंद्र सरकार में कार्यरत किसी व्यक्ति की सेवा काल में मृत्यु हो जाती है और उनकी पत्नी जीवित नहीं है,
हाँ।
और उन्होंने किसी बच्चे को भाई के या किसी बच्चे को गोद रख लिया हो रखा हो, तो क्या वो पेंशन का पात्र है या नहीं?
जी महेंद्र जी नमस्कार। तो इसमें जो है एडॉप्टेड सन का भी प्रावधान है, तो नियम अनुसार वो भी जो है फैमिली पेंशन के पात्र होंगे एडॉप्टेड सन,
वैधानिक रूप से उनको गोद लिया गया,
गोद लिया गया है। जी
प्रमोद जी कई बार विकट स्थिति होती है जब कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है लेकिन उसका पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी जिसको पीपीओ हम लोग बोलते हैं वो नहीं बना होता है, ऐसी स्थिति में आपका विभाग क्या त्वरित कार्रवाई करता है?
इसके बारे में मैं आपके श्रोताओं को बताना चाहूंगा और जो भविष्य में रिटायर होने वाले कर्मचारी हैं
जी
कि हमारे विभाग का भविष्य पोर्टल है जिस पर सब जो पेंशन प्रोसेसिंग है उसको ऑनलाइन देखा जाता है और समयबद्ध तरीके से
जी।
सबसे पहले जो है पेंशनर को अपनी डिटेल देनी होती है, फिर कंसर्न विभाग के जो अधिकारी है उनको भी अपना जो उनका दायित्व है वो निभाना पड़ता है, जो पीएओ होते हैं वो भी उस पर अपना जो उनका ड्यूटीज है रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो निभाते हैं, और ये सब करने के कारण जो है काफी कमी आई है कि जो डिलेड पीपीओ के केसेस थे।
क्या सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 में अगर इस बात पर देरी हो तो ब्याज देने का भी प्रावधान रखा गया है?
जी ये मैं बताना चाहूंगा कि ब्याज का प्रावधान है परंतु उसकी और भी कंडीशंस हैं जो कि पूरी होनी चाहिए तभी जो शिकायत करता है वो ब्याज का अधिकारी पात्र हो सकता है। वो कंडीशंस हर केस में अलग होते हैं तो ये केस टू केस वेरी करता है।
श्रोताओं अब कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर है। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए डॉ प्रमोद कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। श्रोताओं आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsdtalks@gmail.com। इस कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 बजे एक और ज्वलंत मुद्दे को लेकर हम आपके साथ चर्चा के लिए फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विमलेंदु पांडे को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।